بهم طالب نمو سدھارم نمو آئیریارم نمو گجھایارم نمو لوئے سر ساہورم ఈసు పంచనమో యారు సవ్వ పావ ప్రణాశనో మంగళాణం చ సవ్వేసిన్ పఠనం హవై మంగళం చత్తారి మంగళం అర్హంత మంగళం సిద్ధ మంగళం సాహు మంగళం కేవల పండతో ధమ్మో మంగళం చత్తారి లోగుత్తమా అర్హంత లోగుత్తమా సిద్ధ లోగుత్తమా సాహు లోగుత్తమా కేవల పండతో ధమ్మో లోగుత్తమా చత్తారి శరణం పవ్వజామి అర్హంత శరణం పవ్వజామి సిద్ధ శరణం పవ్వజామి సాహు శరణం పవ్వజామి కేవల పండతో ధమ్మో శరణం పవ్వజామి పరమ పూజ్య దేవాదిదేవ తీర్థంకర్ శ్రీ శాంతినాథ్ భగవాన్ జిన్వాణి మాతాకి ఆచార్య గురు శ్రీ విద్యాసాగర్ జీ మినిగా మణిణాయుధర్య పంచకల్లాణసోకావీపత
మోదయా
स्वामी आपको आ गया, बोलिए। गति पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो, मिलजुल करके पढ़ो। इच्छामि वन्ते पंच महागुरु भक्तिकाउ सद्भोगौ तस्सालोचेउ। अठ महापाणिहेर संयुक्तानम अरहंतानम। अठ गुण संपन्नानम उद्भलोय मत्थयम पैठ्यानम सिद्धानम। अठ पवयन माहु संयुक्तान आयर्याण आयाराद सुदनाडो विदेशयान उवध्यायान। तिरयन गुण पालन रयान सब साहून। निच्छकालं अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि। दुख खौ कम खौ बोहिला हो सुख गमन समाहि मरण जिणुण संपत्ति हो मजन। वंदितु सव सिद्धे दुगम चल मनोगम गते वो छामि समय पाहुद मिणमो सुय केवली भणियम। सिद्धो सिद्धादेशु नायवो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपरमेच्छदा भावे। शुद्ध का कथन करने वाला जो शुद्ध न है वह परम भाव दर्शी निर्विकल्प समाधि में तत्पर महामुनियों द्वारा जानने योग्य है। और जो अपरम भाव में स्थित है अर्थात जो निचली अवस्था में अवस्थित है उन सम्यक दृष्टियों के लिए व्यवहार न्याय का ही उपदेश है। इसमें टीकाकार ने उदाहरण दिया है कि जब तक शुद्ध सुवर्ण नहीं मिल जाता तो अधस्तन अर्थात निचली अवस्था वाला स्वर्ण भी गंवाने योग्य नहीं है। यानी अगर निश्चय की उपलब्धि नहीं हो रही है फिर व्यवहार को छोड़ो मत, नहीं तो दोनों से हाथ धो बैठेंगे। जैसे स्वामी ने लिखा है कि अत्र तो न केवलम भूतार्थो निश्चय नयो निर्विकल्प समाधिरतानां प्रयोजनवान भवति किंतु निर्विकल्प समाधि रहिता नाम पुनः षोडश वर्णिका सुवर्ण लाभा भावे अधस्तन वर्णिका सुवर्ण लाभवत केशांचित प्राथमिकानाम कदाचित सविकल्पावस्थायाम मिथ्यात्व विषय कषाय दुर्ध्यान वंचनार्थम व्यवहार नयोपि प्रयोजनवान भवति इति प्रतिपादयति। बोले कि जो निर्विकल्प समाधि में अवस्थित नहीं है तो उनको किसी समय सविकल्प अवस्था की दशा में मिथ्यात्व और विषय कषायों से बचने के लिए आर्त रौद्र ध्यान से हटने के लिए ये व्यवहार में भी उपयोगी होता है। षोडश वर्णिका कार्तस्वर लाभवत सोलह वाणी के सुवर्ण की प्राप्ति के समान अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि काले शुद्ध नय प्रयोजनवान भवति निप्रयोजनो न भवति इत्यर्थ उस समय शुद्ध नय उपयोगी होता है जब निर्विकल्प समाधि में साधु लीन होते हैं। व्यर्थ नहीं जाता व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेण व्यवहार की अपेक्षा विकल्प की अपेक्षा भेद की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा देशित कथित इति व्यवहार देशित व्यवहार नया वो व्यवहार नया है। जो व्यवहार की चर्चा करें जो विकल्पों की चर्चा करें जो भेद की चर्चा करें अथवा पर्याय की चर्चा करें वो व्यवहार नया। पुनः अधस्तन वर्णिका सुवर्ण लाभवत प्रयोजनवान भवति केशाम वो निचली अवस्था वाले स्वर्ण के समान उन जीवों के लिए उपयोगी होता है जो निचली अवस्था वाले हैं निर्विकल्प समाधि की अवस्था में नहीं गए हैं उनके लिए व्यवहार में उपयोगी होता है। अपरमे असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षा श्रावकापेक्षा वा सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगी प्रमत्ता प्रमत्त संयतापेक्षा च देखो गुणस्थानों के नाम बता दिए कि जिन गुणस्थानों में व्यवहार न उपयोगी है कौन से गुणस्थान तो बोले असंयत सम्यक दृष्टि कौन सा गुणस्थान है चौथा अविरत सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि कौन सा गुणस्थान चौथा ही है वही हम देख रहे थे कि आपके अंदर फिर श्रावक अपेक्षा ये श्रावक कौन सा गुणस्थान है पंचम गुणस्थान और सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगी फिर सराग दृष्टि सम्यक दृष्टि इसका नाम है ऐसा जो शुभोपयोग है उसमें अवस्थित प्रमत्ता प्रमत्त संहिता अपेक्षा च भेद रत्नत्रय लक्षण ये भेद रत्नत्रय को धारण करने वाले प्रमत्त और प्रमत्त अप्रमत्त नामक गुणस्थान वर्ती मिली है तो छठा और सातवां गुणस्थान में तो जो छठे सातवें गुणस्थान को प्राप्त करके भी अभी अभेद दशा में नहीं गया निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं हुए हैं उनके लिए व्यवहार में उपयोगी है। अब अगर कोई कहे कि नहीं सम्यक दृष्टि को भले वो अव्रति हो उसके लिए तो निश्चय नहीं उपयोगी है व्यवहार नहीं तो बेकार है तो फिर ये बात यहाँ पर शास्त्र वचन से विपरीत हो जाएगी। शास्त्र में आचार्य जयसिंह स्वामी कह रहे हैं चार गुणस्थानों के स्पष्ट नाम लिख करके कह रहे हैं कि इन गुणस्थानों में जब तक सराग अवस्था है जब तक प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था है लेकिन भेद रत्नत्रय के साथ अभेद रत्नत्रय की अवस्था जहाँ नहीं प्राप्त हुई है निर्विकल्प समाधि में डूबे नहीं है तब तक ये व्यवहार नए प्रयोजनवान है उपयोगी है। अब इसके बाद कहते हैं कि वो सम्यक्त्व क्या वस्तु है सम्यक दर्शन क्या है। यद्यपि सम्यक दर्शन के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथकारों ने अपने अपने अभिप्राय उन उन अनुयोगों की अपेक्षा से प्रस्तुत किए हैं, है तो जिनेन्द्र वचन के विस्तार के रूप में, जिन वाणी में ही वो बात निकली है, जैसे चरणानुयोग ग्रंथ में। चरणानुयोग ग्रंथ में मुनि और श्रावक के आचरण होते हैं, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। और सम्यक दर्शन किसको कहा? श्रद्धानं परमार्थानाम आप्तागम तपोवृतम। परमार्थ जो आप्त यानी परमात्मा, आगम यानी उनके वचन शास्त्र, और तपोवृत यानी सच्चे गुरु साधु, इन तीनों का तीन मूर्ताओं से रहित, अष्ट मदों से रहित और अष्टांग युक्त श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये चरणानुयोग में सम्यक दर्शन की परिभाषा होती है। इसी तरह जब अपन जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत को देखते हैं, तो सिद्धांत की अपेक्षा जब चर्चा निकलती है, तो कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जो सम्यक दर्शन में बाधा डालने वाली सात कर्म प्रकृतियां, उनके उपशम से अथवा क्षयोपशम से अथवा क्षय से होने वाली जो श्रद्धा की निर्मलता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, एक सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को कहा था चरणानुयोग में, और यहाँ कर्म सिद्धांत में क्या कहा कि सम्यक में बाधा डालने वाली सात कर्म प्रकृतियों के उपशम से, क्षयोपशम से अथवा क्षय से प्रकट होने वाली श्रद्धा की निर्मलता सम्यक दर्शन है। इसके अतिरिक्त सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? तो इसके अतिरिक्त जो परिभाषा है सम्यक की, वो है तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थ किसे कहते हैं? सात तत्वों को तत्वार्थ नहीं कहते, ये बड़ी भारी भूल है कि सात तत्वों को तत्वार्थ समझ लेते हैं। तत्व का अर्थ होता है स्वरूप, और अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ। तो तत्वेन उपलक्षितः अर्थः तत्वार्थः, यानी अपने स्वरूप के साथ उस पदार्थ का श्रद्धान हो करना सम्यक दर्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वरूप का भी श्रद्धान वहां आवश्यक है, और जिसके अंदर वो स्वरूप पाया जाता है उस वस्तु का भी श्रद्धान आवश्यक है। तत्वार्थ तत्व श्रद्धान हम कह देते ना, एक अक्षर फोकट में क्यों बढ़ा दिया सूत्र में? और फिर ये तो नियम है, सूत्रकारों का एक नियम है कि अगर एक अक्षर कम हो जाए सूत्र में, तो वो इतने प्रसन्न होते हैं जैसे घर में लड़का पैदा होता है। तब ऐसा लिखा हुआ है, सूत्र संक्षिप्त होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए सूत्र को कभी भी एक अक्षर से भी नहीं बढ़ाने का प्रयास किया जाता। लेकिन इतने बड़े आचार्य उमा स्वामी, जिन्होंने जैन दर्शन का प्रथम संस्कृत ग्रंथ लिखा है, इससे पहले कोई संस्कृत ग्रंथ नहीं है जैन सिद्धांत के, कसाय पाहुड़ है, और फिर कुंदबुन स्वामी के जितने पाहुड़ हैं, समय सार, प्रवचन सार आदि, फिर गुणधर आचार्य द्वारा रचित जो कसाय पाहुड़, जिसकी अभी चर्चा की, इसका नाम लिया था, षटखंड आगम नाम का ग्रंथ है, सब प्राकृत भाषा में, कोई संस्कृत ग्रंथ नहीं। पहला संस्कृत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, उसमें भी दूसरा सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा सूत्र कौन सा है? तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। उसमें तत्वार्थ शब्द लिखा है, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं लिखा। तत्वार्थ और तत्व में अंतर होगा तभी तो लिखा, नहीं तो एक अक्षर घटाकर उत्सव मनाते आचार्य महाराज, पर उनने तत्वार्थ इस शब्द को रखा। क्या अर्थ हुआ तत्वार्थ? तत्व सहित अर्थ, अर्थ यानी अर्यते गम्यते इति अर्थ, जो जाना जाता है वह पदार्थ अर्थ कहलाता है। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ है, अर्थ का अर्थ उद्देश्य भी होता है, अर्थ का अर्थ जो आप लोग जानते हैं वो भी होता है, पैसा, अर्थ का अर्थ, अर्थ अर्थात मीनिंग, किसी शब्द का अर्थ भी होता है। और अर्थ का अर्थ अर्यते गम्यते के अर्थ है, जो जाने जाने वाली वस्तु होती है वो भी होता है। तो यहां पर तत्वार्थ इस शब्द का अर्थ है तत्व यानी अपने स्वरूप से युक्त जो अर्थ वस्तु है पदार्थ, उसका श्रद्धा, मतलब जीव तत्व और जीव पदार्थ इन दोनों के श्रद्धान को तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। फिर तत्व क्या है इस प्रश्न का उत्तर बाद में दिया है चौथे सूत्र में। तीसरे सूत्र में तो सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्ग से और अधिगम से सम्यक उत्पन्न होता है। निसर्ग से अर्थात पूर्व भव के किसी संस्कार वश इस भव में कोई ऐसी परिस्थिति या कोई घटना घट गई तो उसमें एकदम तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, निसर्गज सम्यक दर्शन कहना है जाति स्मरण आदि से। और फिर दूसरा वो है कि उपदेश से तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, वो उपदेश से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसके कारण उत्पन्न हुआ है, ज्ञान को अधिगम कहते हैं। तो उस सम्यक दर्शन का नाम है अधिगमज, निसर्गज और अधिगमज। तो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन की एक परिभाषा होती है। और देखिए सम्यक दर्शन की और कौन सी परिभाषा मिल रही है शास्त्रों में, आपकी स्मृति में हो कुछ? अत्तागम तच्चाणम सद्ग्रहणादो हवे सम्मतम, आचार्य कुनकुन स्वामी ने ऐसा भी लिखा है कि आप्त आगम और तत्वों का श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। फिर समय सार कलश में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए छठे कलश में लिखा है, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्व संततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु नः। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि शुद्ध नय की अपेक्षा जो अपने एक पने में नियत है अर्थात उससे कभी अलग नहीं होता, अपने एकत्व में हमेशा अवस्थित रहता है और अवस्थित रहते हुए भी जो विभिन्न पर्यायों में व्याप्त भी हो जाता है, ऐसा पूर्ण ज्ञान घन आत्मा है, उस आत्मा का अन्य सब द्रव्यों से भिन्न जो दर्शन है अर्थात जो श्रद्धान है यही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यन तय भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, बस ये छेड़ाला की पंक्ति इसी कलश से निकली हुई है। नियमात नियम से आत्मा च तावान है, ये श्रद्धा जितनी है उतनी ही ये आत्मा है। तन मुक्वा नव तत्व संतति मिमा महात्माए मे कोस्तु न। इसलिए नव पदार्थों का जो विस्तार है उसको छोड़कर हमें सिर्फ यह आत्मा, यह सम्यक दर्शन हो, यानी हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा रहे हैं, आत्मा सम्यक दर्शन, बाकी सारी चीजें जो है वो अलग हो जाए। यानी अभेद अवस्था की बात कर रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सम्यक दर्शन का लक्षण हो गया। और देखिए सम्यक दर्शन के विषय में कितनी चर्चाएं आती शास्त्रों में। प्रशम संवेगास्तिक्यानुपंकंपाभिव्यक्ति लक्षणम सराग सम्यक दर्शन। सर्वार्थ सिद्धि में सराग सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, प्रथमम प्रशम संवेगास्तिक्यानुपंपाभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम। तो सराग सम्यक दर्शन होता है वो जहां प्रशम कषायों की उपशांतता, कषायों का शांत होना, ये एक चिन्ह है सम्यक दर्शन को पहचानने का, ये प्रकट होता है कषायों की शांतता। दूसरा चिन्ह धर्म और धर्म के फल में उसको अटूट प्रेम हो जाता है, इसको संवेग कहते हैं। प्रथम लक्षण को प्रशम कहा, दूसरे लक्षण को संवेग कहा। धर्मे धर्म फले च प्रीति ही संवेग, धर्म और धर्म के फल में जो प्रगाढ़ अटूट प्रेम हो जाता है उसका नाम संवेग है। फिर तीसरा आस्तिक्य, आस्तिक्य, आस्तिक्य का अर्थ होता है जो अस्ति है उसको मानने वाला भाव, आस्तिक्य, और मानने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाता है, न मानने वाला नास्तिक। जो है उसको माने सो आस्तिक, न है उसको माने, है उसे न माने नास्तिक। ये भी एक लक्षण है सम्यक। और अनुकंपा, अनुकंपा भी एक लक्षण है। अनुकंपा क्या वस्तु है? किसी की भी पीड़ा को देखकर अपने अंदर भी उसके अनुरूप कंपन आ जाए, दया भाव, करुणा भाव, अनुकंपा, इन चिन्हों से सराग सम्यक्त्व पहचाना जाता है। ये चार चिन्ह है। प्रथम, कभी अपने को ऐसा लगे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं तो देखना कि ये चार है या नहीं। थर्मोमीटर संवेग आस्तिक्य अनुकंपा, देखना अपने प्रति कितनी क्रूरता आ जाती है। कभी कभी कोई बात बिगड़ जाती है तो अपन अपने आप से नाराज हो जाते हैं, ऐसे नाराज होते हैं कि बिल्कुल कोट पीट कर बराबर कर डाले खुद को। जान तो नहीं लेंगे, ये तो ठीक है, इतना व्यवहार तो निभा लेते हैं कि अपन आत्महत्या नहीं करते, लेकिन अंदर कितनी बार मरते हैं, कितनी बार मारते हैं अपने आप को, ये अनुकंपा नहीं है। अपने प्रति कठोर नहीं होना है, कठोर किसके प्रति होना है? कर्म शत्रु के प्रति। तो अगर कर्मोदय के निमित्त से आत्मा में विकार हुआ तो आत्मा की पिटाई करना उचित है? किसकी पिटाई करोगे? समझ में आ रही बात? बहुत सरल गणित है, समझना सरल है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है, पुरुषार्थ करना पड़ सकता है। विकार किसके कारण उत्पन्न हुआ, दुख किससे हुआ? एक तो क्या है कि जब अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं ना, और वो भी एक संकीर्ण दृष्टि से, वो अहंकार के चश्मे से जब अपने आप को देख करके सोचते हैं कि ये मैं हूँ, बुंदेलखंड में कहेंगे तन्नक सो, यानी अहंकार मनुष्य को बहुत छोटा बना देता है। तो अपनी आत्मा का जो व्यापक स्वरूप है वो उस समय विलुप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा के गुण तो रहते हैं विद्यमान, लेकिन पर्याय में दशा ऐसी बन गई है कि उसने अपने आप को इतना संकीर्ण कर लिया कि जो अपार आत्मा का वैभव है उसको भूलकर उसने अपने आप को एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया, अहंकार के पिंजरे में। मैं ये हूं, अब ये हूं, ये में आप कोई भी शब्द ला करके रख दो, वो आत्मा के उस अनुपम वैभव के सामने फीका ही पड़ेगा। लगा लो कोई भी शब्द लगा लो आप, आत्मा के अपार वैभव के सामने वो शब्द लगता कितना है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मैं सबल, दीन, प्रवीण, मूरख, कोई भी शब्द लगा लो आप, सब आत्मा के तिरस्कार करने वाले शब्द, क्योंकि आत्मा की महिमा वचनातीत है। फिर कर्म के निमित्त से जो कुछ घटना घट गई उसको लेकर अगर आत्मा की आप पिटाई कर रहे हैं, उसको डांट रहे, फटकार रहे, तो गलती किसी की और दंड किसी को, ये बात हुई कि नहीं हुई। तो ये अनुकंपा भी सम्यक दृष्टि में होती है कि वो जानता है, वो अपने प्रति दयालु होता है, बहुत बड़ी बात है। इष्टजनों के प्रति दयालु होना सरल है, पर जब अपन अपने आप को अनिष्ट मान लेते हैं तो कितने क्रूर बन जाते हैं अपने प्रति। जीवन भर आपको किसने दुख दिया है, दूसरों ने या आपके मन ने? आपके मन ने दिया ना। तो आपके मन ने अगर आपको दुख दिया तो उसको अलाउ किसने किया दुख देने के लिए, उसको परमिशन कहां से मिली, उसको अनुमति किसने दी? बस यही अपने को पहचानना है कि अब कभी भी कोई भी गलती हो, प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लिया, पर उस गलती का दंड अपने आत्मा को बरसों तक देते रहना उचित नहीं है। वो पर्याय थी, आई चली गई, लेकिन इसका अर्थ ऐसा भी मत निकालना कि अगर कोई विकारी पर्याय आई चली गई तो फिर ये सोचते हुए बैठे रहे कि ठीक है वो तो आती है चली जाती है, अभी फिर भविष्य में भी कभी आ जाएगी और चली जाएगी, उसमें क्या रखा है। तो अगर इस प्रकार आपने विकारों को छूट दे दी तो फिर विकारों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको जीतने के लिए विशुद्धि, निर्मलता की वृद्धि आवश्यक है। पश्चाताप संक्लेश में ही अटके रहना उचित नहीं, पश्चाताप तो होगा क्योंकि जिसको ये विवेक है कि क्या उचित और क्या अनुचित, उसके हाथ से यदि अनुचित होगा तो उसको खेद तो होगा, लेकिन उस खेद तक वो सीमित नहीं रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा। एक रास्ता तो ये है कि जिस कार्य से मुझे खेद उत्पन्न होता है उस कार्य को मैं दोबारा न करूं, और यदि मैं वो कार्य कर चुका हूं और मुझे अत्यधिक खेद हो रहा है और उस खेद खिन्नता में, उस झुंझलाहट में, उस अशांति और बेचैनी के क्षण में मैं कहीं ना कहीं अपनी कषाय निकालना चाहता हूं कि ऐसी गलती क्यों हुई मेरे से, एकदम अपने प्रति क्रोध आ गया है मुझे, तो उस समय अपनी आत्मा को क्षमा कर देना और क्षमा करके शांत मन से अपने उस निर्विकल्प निर्विकार स्वरूप का एक बार स्मरण करके देखना कि मेरा स्वरूप तो ये है, पर मैंने अपनी भूल से पूर्व काल में जो कर्म बंद किया था उसके उदय में मैं संतुलित नहीं रह पाया, और यदि मैं उसी का शोक करते रहूंगा कि संतुलित नहीं रहता और अपने आप को दंडित दूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर बनाऊंगा। मुझे कमजोर नहीं बनना, कमजोर था इसलिए तो भूल हुई, अब मुझे बलवान बनना आवश्यक है। और बलवान बनने के लिए मैं क्या करूं, तो उसका श्रेष्ठ उपाय यह है कि हमेशा सावधान रहना। जो जागृत होते हैं उनके घर चोरी नहीं होती, सो जाते हैं चोरी होती है। इसी प्रकार यदि मैं प्रमादी न बनूं तो फिर कर्म चोर मेरी आत्मा के खजाने को नहीं लूट पाएंगे, और यदि मैं प्रमादी हो गया असावधान हो गया तो फिर कर्मोदय में मैं फिर फिसल जाऊंगा, फिर मुझसे भूल होगी। पर सम्यक दृष्टि अपने प्रति अनुकंपा रखता है, अन्य जीवों के प्रति भी अनुकंपा रखता है, और ये स्वदया अगर कोई सीख जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है जीवन की। स्वदया, कई बार ऐसी खोज करते हैं लोग कि मैं किस पर दया करूं, फिर कोई मिल जाता है तो उसके प्रति वो दया प्रकट भी करता है, लेकिन जब अपने ऊपर दया करने की बात आती है तो फिर थोड़ा कठोर बन जाता है। नहीं, मैं हुई नहीं दया के लायक ही नहीं। कैसे पता, आपको कैसे पता कि मैं किस लायक हूं किस लायक नहीं? आप अपने आप को पूर्णतः जानते हो क्या? ये तो कुछ पर्याय ऐसी आ रही है उदय में, कुछ ऐसे कर्म उदय में आ रहे हैं और फिर ऐसी अवस्था वर्तमान में अपनी बनी हुई है। तो ये भी सम्यक दर्शन का एक स्वरूप दिया हुआ है, शराग अवस्था में। और आत्म विशुद्धि मात्र मित्रत, आत्मा की पवित्रता मात्र वितराग सम्यक दर्शन, सर्वार्थ सिद्धि में ये बात आती है। तो इस तरह सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण, अनेक परिभाषाएं, अनेक भेद प्रभेद आदि उपलब्ध होते हैं। आचार्य कुंदकम स्वामी समय सार ग्रंथ में ये 13वीं गाथा है अमृतचंद स्वामी द्वारा एकाएक, इसमें सम्यक दर्शन के बारे में बतलाते हैं। भूय थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावन च आसव संवरणी जग बंधु मुखो य सम्मतम। भूतार्थ नय द्वारा जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की विचित्र परिभाषा है। क्या भूतार्थ नय से, भूतार्थ नय कौन सा है? कल पढ़ा था अपने, भूतार्थ यानी सत्यार्थ। कौन से नय है भूतार्थ? निश्चय नय। फिर निश्चय और व्यवहार नय के दो दो भेद भी सुने थे तो उसमें तो इनमें से भूतार्थ कौन से नय? सद्भूत व्यवहार नय भी भूतार्थ है और शुद्ध निश्चय नय भी भूतार्थ है। इनसे जाने गए, इन नयों से जाने हुए जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, यही सम्यक दर्शन है। क्योंकि इनको यथार्थ नय से जान लिया तो फिर सद्धान निर्मल हुए बिना रह नहीं सकता, तो कारण में कार्य का उपचार कर लिया। कारण क्या था? इनको जानना। कार्य क्या? निर्मल सद्धान। ठीक है ना? तो ये भी एक पद्धति है किसी बात का कथन करने की। तो यथार्थतः जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ ही सम्यक दर्शन है, अर्थात यथार्थ रूप से जीवादिक को जान लिया तो अब मिथ्यात्व के रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, मिथ्यात्व ठहर ही नहीं सकता। अगर यथार्थ का जीवादिक को जान लिया है तो अब यथार्थ जानने का तात्पर्य ही था सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय अथवा गुण गुणी के भेद के माध्यम से जीव को और उसके गुणों और पर्यायों को पहचान लिया। निश्चय शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो परमात्म स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। अब ये बात जब आती है हृदय में श्रद्धान में तो अनायास अंतरंग में एक भावना आती है कि जब स्वरूप दोनों का एक है तो रूप भी एक क्यों ना हो जाए। स्वरूप तो एक है निश्चय से भगवान का और मेरा, लेकिन रूप रूप भिन्न है। वो पर्याय नय की अपेक्षा से विचार करने पर पता चलता है कि उनका रूप अलग है, मेरा रूप अलग है। चाहे वो अरहंत परमात्मा हो चाहे सिद्ध परमात्मा हो, उनका रूप अर्थात उनकी जो वर्तमान पर्याय है वो भिन्न है मेरी वर्तमान पर्याय से। तो बस परमात्मा उस तट पर है, मैं इस तट पर हूं, बीच में संसार रूपी जल है जिसको भव जल कहा है, और उस पर से निकलने का जो पुल है वो है भक्ति। भक्ति के पुल से अपने को वो संसार रूपी जल पार करना है, और यहाँ इस तट पर आत्मा है उस तट पर परमात्मा है, परमात्मा में जाना है। और जाने के लिए चलना स्वयं पड़ेगा। और चलने के लिए दृष्टि आवश्यक है, आंखें, और वो आंख है सम्यक ज्ञान, पैर है सम्यक चारित्र, और पुल है वो भक्ति, वो श्रद्धा। तो उससे पार करना है संसार को तो चलना आवश्यक है। इधर बैठे रहो और कोई उठाकर वहां पहुंचा दे, क्या होता है कि उस पुल से निकलने वाला किसी को उठाकर नहीं निकल सकता, ये समस्या है। वो एक ही निकलेगा, अकेला ही निकलेगा। तो यदि आपको निकलना हो तो आपको भी उठकर आंख खोल कर देखते हुए, द्रव्यार्थिक में पर्यायार्थिक में दोनों आंखों को खोलकर, उस प्रमाण कहलाता है। सब नयों का जो विषय होता है वो प्रमाण है, और प्रमाण का जो एक अंश है वो नय है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान जो है वो प्रमाण है। तो दोनों आंखों को खोलकर चलिए, दोनों पैरों से चलिए, एक व्यवहार चारित्र का पैर है दूसरा निश्चय चारित्र, और चलते चलते पुल को पार कर लीजिए और परमात्मा हो जाइए। कितना सरल ऐड है। तो भूतार्थ नय से जाने गए जीवादि नव पदार्थी सम्यक दर्शन है। फिर समय सार की सारभूत गाथा है इसमें। शुद्ध नय किसको समझा जाए, किस दृष्टिकोण को, किस नय को शुद्ध नय कहें? तो आचार्य कहते हैं जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्नयं नियतम अविशेषम संयुक्तम तन शुद्ध नयम वियाणाहि। जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत अविशेष और असंयुक्त देखता है, उस नजरिए को, उस दृष्टि को, उस दर्शन शैली को शुद्ध नए जानो। बड़ी सुंदर बात है। ऐसा लग रहा है कि इसकी टीका भी इसमें ले लें स्वाध्याय में, क्योंकि बड़े सुंदर ढंग से आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उसका दर्शन कराया है जिसको देखने के लिए भव भवांतरों का पुरुषार्थ भी कभी कभी असफल होता है, उसका दर्शन इतने सुंदर ढंग से कराया है। बात ऐसी है कि अनुभवियों के शब्द भी निराले होते हैं, वो उनको कोई ऐसे अनूठे शब्द सूझते हैं जो सामान्यतः किसी की बुद्धि में भी ना आए। ऐसे दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने इतने सुंदर ढंग से समझाया है कि उस शुद्ध न क्या वस्तु है जो आत्मा को अवबद्ध देखता है, जो आत्मा को अस्पृष्ट देखता है, जो आत्मा को अनन्य देखता है, जो आत्मा को नियत देखता है, जो आत्मा को अविशेष देखता है और जो आत्मा को असंयुक्त देखता है, उस देखने वाले नए को, उस दृष्टिकोण को शुद्ध नए जानो। अस्पृष्ट, अस्पृष्ट का अर्थ जिसे किसी ने भी नहीं छुआ, अबद्ध का अर्थ जो किसी के बंधन को प्राप्त नहीं हुआ, अनन्य का अर्थ जो किसी अन्य रूप का धारक नहीं बना। नियत, इसकी व्याख्या अपन टीका के माध्यम से फिर देख ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इसके लिए कम से कम एक पीरियड अपेक्षित है। इतना सुंदर वर्णन है इसका आत्मा का, और फिर इसके बाद वाली गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध नय जो दिखलाया है उसको जिसने देख लिया, जो पश्चद अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश सुप्त मज्जम पश्चद जिन शासनम सर्वम, उसने द्वादशांग को देख लिया। क्या बात लिखी है कि जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध नय से देखा उसने पूरे द्वादशांग को देख लिया। अब उसके लिए देखना कुछ भी नहीं बाकी रहा, सब कुछ देख लिया। तो पश्चद जिन शासनम सर्व, सर्व जिन शासन को उसने देख लिया। इसकी व्याख्या अपन फिर देखते हैं। इसमें एकदम सरल बुद्धि होकर के आप श्रवण करें तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर कुछ भी निकालने की कोशिश न करो। जो गुरु बता रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी और अमृतचंद स्वामी, उसको आंख बंद करके एक बार सुन लो, क्योंकि अनादिकाल से अपनी जो आंख खुली हुई है उसी को बंद करने की जरूरत है। और जिसको आचार्य खोलने जा रहे हैं उसके लिए ये वाली आंख बंद करना बहुत आवश्यक। अगर ये खुली रही तो वो बंद रहेगी, और वो खुलेगी तो ये बंद होगी। तो इसको बंद कर लो और उसको खोल लेने दो। गुरु जी खोलेंगे, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसिंह स्वामी बहुत सुंदर ढंग से वो दृष्टि प्रदान करने जा रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी अनमोल देन होती है गुरु की। बाकी क्या देते हैं गुरु? दीक्षा तो ठीक है, व्यक्ति कभी भी खुद भी ले लेता है, कभी अचानक जाकर शिखर जी में भी दीक्षा ले सकता है और भी कहीं ले सकता है। और स्वाध्याय और फिर और दूसरी बातें भी बहुत सारी बातें कोई विद्वान या कोई साधु या कोई व्याख्याता बतला सकते हैं, लेकिन ये दृष्टि की निर्मलता गुरु के सिवाय कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इस ग्रंथ को सुनते समय, इन वर्णनों को सुनते समय बिल्कुल तर्क रहित हो जाओ। ये समझ लो कि मुझ जैसा संसार में कोई दूसरा महामूर्ख नहीं है, बहुत कड़वे शब्द लगेंगे, लेकिन वो आपके अहंकार को कड़वे लगेंगे। अंतरात्मा से पूछोगे तो फिर वो कहेगी कि सच बात है, बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल अपने आप को कोरी स्लेट बना लेना, बिल्कुल पूर्ण अज्ञानी। जब घड़ा खाली होता है तब उसमें अमृत भरा जाता है। पहले से अगर आपके पास कुछ भरा हुआ होगा आपके घड़े में, तो फिर ये अमृत व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए इस अमृत के लिए अपने अंदर स्थान बना लें, और कल आने से पहले थोड़ा ध्यान करके आना। ध्यान करने से जगह बनती अंदर, और जहाँ चप्पल जूते उतारते हैं वहाँ उस मैं को भी उतार करके आ जाना, और यहाँ आकर के देखना आखिर कुंदगुल स्वामी जो दिखला रहे हैं वो मैं कौन है। कोई अनूठी वस्तु, कोई अलौकिक तत्व, कोई अद्भुत द्रव्य, अद्भुत बात होगी वो चीज़। अगर आ गई तो अनायास वो सम्यक दर्शन का क्षण आपके जीवन में घटित हो जाए। हो सकता है कुछ जीव सम्यक दृष्टि हो, कुछ न भी हो, और फिर हो भी सकता है कि कोई सम्यक दृष्टि है अभी, अगले क्षण मिथ्या दृष्टि हो। पर ये निधि अगर आ गई अंदर तो फिर समझ लो FD हो गया, फिक्स डिपॉजिट। ऐसे अद्भुत अलौकिक बात है। कम से कम इसके संस्कार आपको भवांतर में निसर्ग सम्यक दृष्टि बना सकते हैं। ये बात अगर सुनी हुई होगी आपकी श्रद्धा के साथ, आचार्य गुनगुन स्वामी ने ये बात भी लिखी है कि विनय पूर्वक सुना हुआ शास्त्र वचन आज बुद्धि की कमजोरी वश कभी विस्मृत भी हो सकता है, क्योंकि अपना ज्ञान उतना विश्वसनीय नहीं है। क्या भरोसा कब तक टिके, घबराना नहीं। विनय से तुमने उसको ग्रहण किया है तो आगामी भव में वो ज्ञान तुम्हें केवली बना देगा। ये विनय की महिमा है कि इस जन्म में आपने जिनवाणी की इतनी विनय की है कि समझ में ना आते हुए भूलने के बावजूद भी कभी अनादर नहीं किया, कभी आसाधना नहीं की, कभी इच्छा भी नहीं की कुछ अनादर या अभिनय जैसी, इच्छा रूप मन में भी नहीं कभी ऐसी भावना की। तो ये भावना वहां जाकर के केवली बनाने वाली है। जैसे कभी शास्त्र के वचन सुनाई दे रहे हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे काम छोड़कर बस इसी में मैं तल्लीन हो जाऊं। ऐसा लगता है कि समय और स्थान भूल गए हैं, कहां बैठे हैं, कितना समय हो रहा है, दिन है रात है क्या है, कुछ ख्याल ही नहीं जाता उधर। बीच में उठकर जाने की कभी सपने में भी इच्छा ना हो, यहां जिनवाणी मिल रही हो और कोई जिनवाणी को छोड़कर चला जाए, ये कोई साधारण बात है क्या? इतनी अपूर्व बात। इसको आप कल तैयारी के साथ आइए और देखिए आचार्य कुनकुन स्वामी क्या बतलाते हैं। जवाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा रेत हुंदो, हे जिन वाणी भारती ओही जको दिन रैन, तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख छे।
Thank you.